नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में। मैं हूँ शालू और मेरे साथ है संदीप।
कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार।
कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम धन्यवाद देते हैं उन दोस्तों का जिनके SMS मिलते रहते हैं।
दोस्तों, हमारे पिछले कार्यक्रम जो कि स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा पर आधारित था, हमने कार्यक्रम में आपसे राय पूछी थी।
हमें प्राप्त संदेशों में से ज्यादातर लोगों ने यही राय भेजी है कि स्कूली युवाओं में इस तरह की हिंसा के लिए खुद युवा ही जिम्मेदार है।
दोस्तों, वैसे हमें काफी SMS मिले हैं, पर जिन्होंने अपना नाम तथा अपनी जगह के बारे में लिखा है उन दोस्तों के नाम इस प्रकार से हैं। सौरव पाठक महबूब अली UP से,
दीक्षा पूनम गुप्ता सहारनपुर से,
और आनंद काला देहरादून से।
दोस्तों, हमारे कार्यक्रम को सुनकर बहुत से श्रोताओं ने हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। सिद्धांशु UP से लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार आपका कार्यक्रम सुनता हूँ, यह हमें काफी जानकारियाँ देता है। और जो कार्यक्रम स्कूल में युवाओं पर बढ़ती हिंसा पर आधारित था, जिन श्रोताओं ने वो कार्यक्रम सुना होगा तो शायद उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
रविंद्र गौतम गाजियाबाद से लिखते हैं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमारी भारतीय सेना के जवानों के लिए भी कोई कार्यक्रम बनाएं।
अभिषेक विहार से लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं ये कार्यक्रम काफी समय से सुन रहा हूं, और मैं अपने प्यारे श्रोताओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे स्कूल में बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं वो बंद करने चाहिए, उन पर रोक लगा देनी चाहिए।
इस तरह से हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, कृपया करके SMS भेजते समय अपना नाम तथा जगह के बारे में जरूर लिखें।
हमने नरेगा पर आधारित रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की है और आज का कार्यक्रम इसी की चौथी कड़ी है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो गरीबी के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो।
हाँ शालू, और बार बार गरीबी पैदा करने वाले कारणों जैसे मिट्टी का बहाव, जंगलों का कटान, सूखा आदि पर रोक लगे।
दोस्तों, मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान का फैलना आज विश्व भर के लिए विकट समस्या बन गया है। इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि रेत का साम्राज्य बनने से अनाज का उत्पादन घटता है
और अनेक प्राकृतिक तंत्रों की धारण क्षमता कम होती है। पर्यावरण भी इसके कुप्रभावों से अछूता नहीं रह पाता है।
रेगिस्तान इलाकों में पानी की सीमित मात्रा की वजह से कृषि का उत्पादन एक सीमा तक होता है। यहाँ वर्षा बड़े ही अनियमित ढंग से होती है, जिससे अन्न के उत्पादन में बड़ी बड़ी अनियमितताएं देखी जाती हैं, जिससे गरीब तबके के लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
दोस्तों, जल संरक्षण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर किया जा सकता है, और राजस्थान राज्य में जल संरक्षण को लेकर बहुत से सफल प्रयोग हुए हैं।
तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल संरक्षण की, क्योंकि नरेगा कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं।
तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, जिसे आप तक लेके आए हैं वन वर्ड साउथ एशिया।
दोस्तों, जल संरक्षण के लिए आज भी बहुत सी पारंपरिक विधियों को अपनाया जाता है। इनसे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती और मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है।
राजस्थान के अलवर जिले में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठन तरुण भारत संघ ने सैकड़ों चेकडैम बनाकर एक मृत नदी को जीवित किया।
इस चमत्कार का पूरा लाभ उठाने के लिए नदी के किनारे स्थित गांव के निवासियों ने एक नदी संसद बनाई है, ताकि पुनर्जीवित नदी की हिफाजत और उसके पानी का समान बंटवारा हो सके।
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सामला तालुके के निवासियों ने लगभग 10 छोटे तालाब खोदकर आसपास के भूमिगत जल भंडारों को भरने में सफलता प्राप्त की है।
दोस्तों, अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने जल और भूमि संरक्षण के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी का संगठन, गुजरात में जल एवं मृदा विकास प्रतिष्ठान और आगा खान ग्रामीण समर्थन कार्यक्रम। इन सभी संगठनों ने समुदाय के साथ मिलकर काम किया है और पारंपरिक ज्ञान से भरपूर फायदा उठाया है।
दोस्तों, नरेगा कार्यक्रम में भी जल संरक्षण के लिए तालाबों, कच्चे नाड़ियों और चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है,
जिससे भूमि सिंचाई के साथ साथ कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा। दोस्तों, हमने बात की कुछ ऐसे नरेगा श्रमिकों से, आइए सुनते हैं वे इन कार्यों को लेकर किस प्रकार से उत्साहित हैं।
मैं मैं गोपाल लोहार बोलता हूँ, जिला भीलवाड़ा पंचायत समिति सोना से। हमारे यहाँ पे नरेगा में जो भी कार्य हुआ वो जल संरक्षण के लिए हुआ है। वो नाडी ए निकट जो भी बंदे हैं वो भविष्य के लिए पानी रोकने के लिए किसानों को हित में ही हुआ है, और वहाँ से किसानों को फायदा होगा उनसे, और पशु को भी फायदा होगा, पेड़ पौधे अच्छे चलेंगे, हरियाली बनी रहेगी।
मेरा नाम अरुणा शर्मा है, मैं भीलवाड़ा जिले के ग्राम कांदा की रहने वाली हूँ। नरेगा के तहत हमारे गांव में जल संरक्षण हेतु बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए गए जिससे कि बरसात के जल को इकट्ठा किया जा सके, जिससे कई तालाबों और एनीकटों का निर्माण किया गया, और इससे बरसात का पानी इकट्ठा होगा तो भूजल स्तर में वृद्धि होगी। और हमारे गाँव में लोग अधिकतर खेती करते हैं, इसे हमारे कुओं में पानी होगा, और कुओं में पानी होने से लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं, तो वो बाहर नहीं जाएंगे मजदूरी करने, और किसान अपनी खेती अच्छी तरह से करेंगे। और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि सरकार ऐसे और भी कार्य करवाए जिससे कि हमारे गांव के लोग किसान वृद्धि करे, उनके पास भी आय के साधन हो।
सर मेरा नाम कन्हैयालाल है सर, और हमारे जो है जल संरक्षण की जल के लिए जो है सरकार ने हर तरह से व्यवस्था की, मतलब तालाब को जो नाला बनाना एनीकट भी बनाया, उससे जो है पानी की रुकावट होकर के पानी इकट्ठा हो, उससे जो हमारे जो है जल इकट्ठ होकर के जो है कुएं में धरती में जो है नमी पैदा हुई, और नमी से कुएं में जल पैदा हुआ, उससे हमारे मतलब जो है जैसे एनीकट के पास में जो खेत वगैरह है उनके अंदर पानी की सप्लाई होने से उसमें फसल पैदा हुई।
मेरा नाम सीता है और मैं कंदा ग्राम की रहने वाले हूँ। हमारे गांव में जो भी एनीकट बने हुए हैं उसमें पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो हमारे गांव में जो भी खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो हमारे गांव वालों गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और यहां पर ही काम में लगे रहेंगे।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, और आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण की।
नरेगा कार्यक्रम के जरिए टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को रोजगार के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिले।
जल संरक्षण के लिए बहुत सी प्राचीन विधियां काम में लाई जाती हैं, जैसे एक विधि है पट्टा। वर्षा जल को संचित करने वाली इस प्राचीन विधि को भीलों ने विकसित किया है।
दोस्तों, जल संरक्षण के अंतर्गत नदी नालों की धारा को रोककर 30 से 60 सेंटीमीटर गहरा सरोवर बनाया जाता है। यह गहराई खेतों को पानी ले जाने वाली नहरों में पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। इस विधि की सहायता से साल में दो फसल उगाना संभव हो जाता है।
सिंचाई की एक रोचक बात यह है कि पारंपरिक विधि में मिट्टी के घड़ों का उपयोग होता है। इन घड़ों में एक छेद बने होते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है। इन घड़ों को पेड़ पौधों की जड़ों के पास जमीन में दबा दिया जाता है और समय समय पर पानी भरा जाता है।
घड़ों से सिंचाई करने की इस विधि से सारा पानी धीरे धीरे पेड़ पौधों को मिलता है। इसे आधुनिक टपक सिंचाई का एक घरेलू विकल्प माना जा सकता है। हमारे देश के अनेक भागों में इस अनोखी विधि को वनीकरण कार्यक्रमों में अपनाया गया है और अन्य देशों में भी इसका प्रचार हो रहा है।
दोस्तों, खेती की नींव तालाब होते हैं, यह वर्षा जल को संचित करते हैं। इन्हें या तो जमीन खोदकर बनाया जाता है या पानी के बहाव के मार्ग में दीवार बनाकर।
जल संरक्षण के लिए नरेगा कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं मनोज त्रिपाठी जी, जो कि सुवाणा पंचायत जिला भीलवाड़ा राजस्थान से हैं और नरेगा कार्यक्रम से जुड़े हैं। मनोज जी, आपका हमारे कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जल संरक्षण को लेकर नरेगा के तहत अभी तक आपके ब्लॉक में क्या क्या कार्य हुए हैं?
जल संरक्षण को लेकर सुवाणा पंचायत समिति में, जिसके अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतें आती हैं और लगभग 140 राजस्व गांव शामिल हैं, इसमें जल संरक्षण को लेकर काफी कार्य हुए हैं, जिसके अंतर्गत एनीकट बनाना और तालाबों को गहरा करना, नहरों को सुदृढ़ीकरण का कार्य और बावड़ी वगैरह का साफ सफाई वगैरह इनकी कार्य हुए हैं।
आपको क्या लगता है कि जल संरक्षण को लेकर इस ब्लॉक में कौन कौन सी प्राचीन विधियों को इस्तेमाल किया गया है और इन कामों से आपको क्या फायदा नजर आता है?
जल संरक्षण को लेकर प्राचीन विधियों के अंतर्गत तालाबों को गहरा कराना, नाडियां खुदवाना ताकि भूजल स्तर बढ़ सके, उस क्षेत्र के कुएं बावड़ी वगैरह रिचार्ज हो सके, इस तरफ राज्य सरकार ने काफी ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि राजस्थान एक मरु प्रदेश है और यहाँ वर्ष भर पानी की किल्लत रहती है, तो मेन राज्य सरकार का और राज्य सरकार ने नरेगा के माध्यम से इसी को फोकस करते हुए मेन अपना केंद्र बिंदु जल संरक्षण को ही रखा है। इसके अंतर्गत मैक्सिमम जितना हो सकता संभव वो कार्य सभी प्रकार के इसमें लिए गए हैं।
इन कामों से आपको क्या फायदा नजर आता है?
इस कामों से यही फायदा है कि वर्षा के दौरान जो पानी गिरता है वो मैक्सिमम अपने जमीन के अंदर जा सके और चारों तरफ उसका बैलेंसिंग ग्राउंड लेवल जो अंडरग्राउंड पानी है वो रिचार्ज हो सके और उसका साइमल्टेनियसली एक तरह से सभी तरफ से वाटर लेवल एक साथ ऊपर आए, जिससे कुएं बावड़ी वगैरह में पानी काफी अच्छा हो और कृषि खेती बाड़ी वगैरह अच्छी हो सके, सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके इस गांव लेवल तक। और इससे पलायन वगैरह रुकेगा, लोगों को अपने स्वयं के गांव में रोजगार मिलेगा, वह कई तरह से खेती बाड़ी करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
भविष्य में जल संरक्षण को लेकर आपको क्या लगता है कि नरेगा में और क्या हो सकता है?
भविष्य में जल संरक्षण को लेकर नरेगा में काफी कार्य कराए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे जो अपनी पुरानी नाड़ियां हैं या बावड़ियां हैं उनको गहरा कराना, उनकी आवक के रास्ते नए नए रास्ते खोलना ताकि और उनकी गहराई और उनके जो भराव क्षमता उसको बढ़ाकर आसपास के एरिया को रिचार्ज करना, ऑलरेडी जो नहरें बनी हुई हैं उनका मरम्मत करवा के उनको पक्का करा के काफी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो इरिगेशन का है वो डेवलप किया जा सकता है।
आपको क्या लगता है कि नरेगा कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर कोई प्रस्तावित योजना है?
अभी नरेगा में जल संरक्षण को लेकर काफी कार्य चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये इसमें इरिगेशन विभाग भी इसमें जुड़ गया है ताकि जो नहरों का जल संरक्षण का जो जाल है उसको सुदृढ़ किया जा सके, वो जो पुरानी नहरें हैं जिनको काफी मरम्मत का कार्य बाकी है वो पूरा प्रॉपर हो सके और नहरों का एक अच्छा जाल बिछ सके, और जो कि पुराने तालाब हैं जो कि कच्चे हो गए हैं उनको भी मजबूत किया जा रहा है, जो नाड़ियां हैं जो पुरानी है भराव हो गया उनको गहरा करके मजबूत मेड़बंदी की जा रही है ताकि वर्षा के दौरान वो फूटे नहीं, टूटे फूटे नहीं और गांव का पानी गांव में ही संरक्षित हो सके। इसके लिए काफी अच्छा काम हो रहा है प्रोजेक्ट में।
आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम से लोग जुड़ने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकलती है?
एक अगर सकारात्मक सोच लेके इसमें अगर गांव के लोग काम करते हैं तो उनके लिए सबसे इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जहां वो रहते हैं उनको वहीं पे उन्हीं के लिए गांव के लिए सामूहिक कार्य दिया जा रहा है और वो ऐसा कार्य है जिससे पूरी गांव की जनता को फायदा मिलेगा, पूरे गांव की जनता को पीने का पानी चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे कृषि के लिए हो वो उन्हीं के द्वारा संरक्षित हो रहा है। तो इससे अगर प्रत्येक गांव का नागरिक अगर ऐसा ही सोच ले, पॉजिटिव वे में अगर नरेगा में कार्य करता है तो सबसे बढ़िया ये योजना है, इस पे अपने को सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए ताकि जल संरक्षण में राजस्थान में ये जल संरक्षण की समस्या से सामूहिक रूप से इसे छुटकारा मिल सके।
मनोज जी, आपने हमसे बात करी और हमें और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज और आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण की।
दोस्तों, यहाँ पर वर्षा जल और सतही जल का आपसी संबंध जानना आवश्यक है। नदियों में बहने वाला जल केवल वर्षा जल अथवा ग्लेशियर से पिघलकर बहता हुआ पानी नहीं है।
नदी अपने जल में भूमिगत जल से भी योगदान लेती है, साथ ही भूमिगत जल को योगदान देती है।
तालाब, झील और बांधों के इर्द गिर्द भूमिगत जल की सह सुषमता का कारण यही है कि ये ठहरे हुए जल स्रोत आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी इन प्राकृतिक जल संग्रहालयों को प्रदान करते रहते हैं।
इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर बहने वाले जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत एक दूसरे की सहायता पर निर्भर होते हैं।
दोस्तों, वर्षा जल को यदि संग्रहित कर चट्टानों तक पहुंचाया जाए तो भूमिगत जलाशयों को भरा जा सकता है। प्रकृति अपने सामान्य क्रम में ये कार्य करती रहती है, किंतु आज जब ये समस्या विकराल है तो मनुष्य के लिए अभियान बनाकर यह कार्य करना आवश्यक हो गया है।
आज हमारा प्रमुख उद्देश्य जल को जीवन मानकर बचाया जाना और सरल वैज्ञानिक विधियों द्वारा इसे भूमि के भीतर पहुंचाया जाना है, जिसमें हम सभी को जुटना होगा।
ग्रामीण भारत में संसाधन प्रचुर मात्रा में है, आवश्यकता तो बस इन्हें सही उपयोग में लाने की और नरेगा कार्यक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।